नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Nutri के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रॉबिन विलियम्स की द मैक इज नॉट अ टाइपराइटर एक संक्षिप्त शैली मार्गदर्शिका है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर पर लिखे दस्तावेजों को पेशेवर टाइपसेटिंग के मानकों के करीब ले जाना है। यह पुस्तक मूलतः मैकिंटोश उपयोगकर्ताओं के लिए लिखी गई थी, लेकिन इसका केंद्रीय तर्क किसी एक मशीन से बड़ा है। कंप्यूटर को केवल इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मानकर काम करने से टाइपोग्राफी की अनेक क्षमताएं अनदेखी रह जाती है। पुस्तक उन छोटे निर्णयों पर ध्यान देती है जो पाठ की पठनीयता, लय और विश्वसनीयता बदलते हैं, जैसे उद्धरण चिन्ह, डैश, रिक्त स्थान, इंडेंट, पंक्ति दूरी और विराम चिन्हों की स्थिति। इसका रूप भारी सिद्धांत वाली डिजाइन पुस्तक का नहीं, बल्कि छोटे, सीधे और लागू किए जा सकने वाले पाठों का है। विलियम्स लेखन, संपादन और पृष्ठ विन्यास के संबंध को सरल भाषा में स्पष्ट करती है, इसलिए यह पुस्तक उन लोगों के लिए उपयोगी है जो रिपोर्ट पत्र, समाचार पत्रिका, पांडुलिपि या अन्य मुद्रित सामग्री बनाते हैं पर औपचारिक डिजाइन प्रशिक्षण नहीं रखते। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, टाइपराइटर की आदतों से कंप्यूटर आधारित टाइपोग्राफी की ओर बदलाव। पुस्तक का आधारभूत संदेश यह है कि कंप्यूटर पर टाइप करना और टाइपराइटर पर टाइप करना एक ही काम नहीं है। टाइपराइटर की तकनीकी सीमाओं ने कई आदतें पैदा की, जैसे सीधे उद्धरण चिन्हों का इस्तेमाल, सीमित डैश विकल्प, तयशुदा अक्षर चौड़ाई और अनुच्छेद बनाने के लिए बार बार स्पेस या रिटर्न दबाना। डिजिटल उपकरणों में इन सीमाओं का औचित्य नहीं रहता, फिर भी उपयोगकर्ता अक्सर वही तरीके दोहराते हैं। विलियम्स इस अंतर को केवल सजावटी सुधार नहीं मानती। गलत तरीके से लगाए गए स्पेस, मैनुअल लाइन ब्रेक या लगातार टैब दस्तावेज की संरचना को अस्थिर बना देते हैं। बाद में फॉन्ट, मार्जिन या पृष्ठ आकार बदलने पर पूरा विन्यास बिगड़ सकता है। इसके विपरीत, पैराग्राफ सेटिंग, टैब स्टॉप और शैलीगत नियंत्रणों का सही उपयोग दस्तावेज को संपादन योग्य और सुसंगत रखता है। पुस्तक इसीलिए उपयोगकर्ता को कीबोर्ड की पुरानी आदतों से हटाकर लेआउट के परिणाम के बारे में सोचने को कहती है। इसका व्यावहारिक निष्कर्ष स्पष्ट है। साफ दिखने वाला दस्तावेज संयोग से नहीं बनता, बल्कि सही डिजिटल नियंत्रणों के समझदार उपयोग से बनता है। दूसरा, कर्ली कोट्स, अपोस्ट्रोफी और डैश के जरिए विराम चिन्हों की शुद्ध आकृति। विलियम्स उन विराम चिन्हों को विशेष महत्व देती है जिन्हें साधारण टाइपिंग में एक जैसा समझ लिया जाता है। टाइपराइटर शैली के सीधे डबल कोट और सीधे अपोस्ट्रोफी तकनीकी विकल्प थे, जबकि पेशेवर टाइपोग्राफी में खुलने और बंद होने वाले घुमावदार उद्धरण चिन्ह अलग होते हैं। सही चिन्ह पाठ के भीतर शब्दों की सीमाओं और उद्धरण की दिशा को सहज रूप से स्पष्ट करते हैं। इसी तरह हाइफन, एन डैश और एम डैश अलग काम करते हैं। हाइफन संयुक्त शब्दों में जुड़ाव दिखाता है, एन डैश अक्सर सीमा या संबंध के लिए प्रयुक्त होता है, और एम डैश वाक्य में अधिक स्पष्ट विराम या अतिरिक्त विचार प्रस्तुत कर सकता है। इनका स्थानापन्न एक ही छोटी रेखा से कर देना पाठ को कम परिष्कृत बनाता है। पुस्तक का उद्देश्य हर पाठक को प्रकाशन विशेषज्ञ बनाना नहीं है, वह यह दिखाती है कि उपलब्ध चिन्हों में अर्थ और दृश्य लय दोनों का अंतर होता है। जब लेखक सही चिन्ह चुनता है तो संपादन अधिक सावधान दिखता है और पाठक को रुकने, जुड़ने या अर्थ ग्रहण करने के लिए अनावश्यक बाधा नहीं आती। छोटे प्रतीकों की यह देखभाल दस्तावेज की समग्र गुणवत्ता का प्रत्यक्ष संकेत बनती है। तीसरा, स्पेस, टैब और इंडेंट से अनुच्छेदों की संरचना बनाना। पुस्तक का एक अत्यंत व्यावहारिक पक्ष रिक्त स्थान के अनुशासित उपयोग से जुड़ा है। विलियम्स बताती हैं कि स्पेस बार से किसी पंक्ति को धकेलना, कॉलम बनाना या अनुच्छेद का इंडेंट तैयार करना भरोसेमंद तरीका नहीं है। अलग फॉन्ट, अलग प्रिंटर या अलग पृष्ठ चौड़ाई में ऐसे बनाए गए अंतर बदल जाते हैं, इसलिए दृश्य संरेखण के लिए टैब स्टॉप और अनुच्छेद इंडेंट जैसे निर्धारक नियंत्रण आवश्यक है। यह नियम खासकर सूचियों, पते, शीर्षकों, सारणीनुमा सामग्री और बहुस्तरीय अनुच्छेदों में उपयोगी है। पुस्तक दो वाक्यों के बीच दो स्पेस छोड़ने की टाइपराइटर आदत पर भी प्रश्न उठाती है। अनुपातिक फॉन्ट और आधुनिक टाइप सेटिंग में एक वाक्यांतर स्पेस सामान्यतः पर्याप्त होता है, क्योंकि विराम चिन्ह और अक्षरों की आकृति पहले ही वाक्य सीमा का संकेत देती है। यहां मुद्दा केवल नियम मानना नहीं, बल्कि पाठ की रंगत को नियंत्रित करना है। अनियमित खाली जगह पृष्ठ पर छेद जैसी दिख सकती है और पढ़ने की गति तोड़ती है। सुविचारित स्पेसिंग पाठ को शांत, संगठित और भरोसेमंद रूप देती है। इस तरह पुस्तक सूक्ष्म लेआउट निर्णयों को लेखन की स्पष्टता से जोड़ती है। चौथा, कर्मिंग, लीडिंग और पंक्ति लंबाई के माध्यम से पठनीयता का नियंत्रण। द मैक इज नॉट अ टाइपराइटर टाइप को केवल अक्षरों के चयन के रूप में नहीं देखती। अक्षरों के बीच, शब्दों के बीच और पंक्तियों के बीच की दूरी भी पाठक के अनुभव को तय करती है। कर्निंग विशिष्ट अक्षर युग्मों के बीच अंतर को संतुलित करने का काम है। कुछ अक्षर आकृतियां साथ आने पर सामान्य दूरी से बहुत दूर या बहुत पास दिख सकती है, इसलिए दृश्य संतुलन यांत्रिक समानता से अधिक महत्वपूर्ण होता है। लीडिंग अर्थात पंक्तियों के बीच का अंतर लंबे पाठ में विशेष प्रभाव डालता है। बहुत कम लीडिंग से पंक्तियां आपस में चिपकी लगती है और आंख अगली पंक्ति खोजते समय भटक सकती है। बहुत अधिक लीडिंग से अनुच्छेद की एकता कमजोर हो सकती है। पुस्तक पंक्ति लंबाई और पाठ के घनत्व के महत्व की ओर भी ध्यान दिलाती है। अत्यधिक चौड़ी पंक्तियां पढ़ते समय आंख की वापसी कठिन बनाती है, जबकि अत्यधिक संकरी पंक्तियां बार बार टूटती है। ये सिद्धांत बताते हैं कि पठनीयता कोई अस्पष्ट सौंदर्य बोध नहीं है, या माप अंतर और पृष्ठ पर पाठ के व्यवहार से निर्मित होती है। लेखक या संपादक इन तत्वों को समझकर सामग्री को अधिक सहज और कम थकाने वाला बना सकता है। अंत में व्हाइट स्पेस, विडोज, ऑर्फन्स और हैंगिंग पंक्चुएशन की अंतिम संपादकीय सावधानी पुस्तक पेशेवरता को केवल मुख्य पाठ तक सीमित नहीं रखती, बल्कि पृष्ठ के किनारों और टूटनों पर भी ध्यान देती है। वाइड स्पेस यानी जानबूझकर छोड़ी गई खाली जगह सामग्री को सांस लेने की जगह देती है और अलग खंडों के संबंध को स्पष्ट करती है। हर खाली जगह भर देना पृष्ठ को अधिक उपयोगी नहीं बल्कि अधिक बोझिल बना सकता है। विलियम्स विडोज और ऑर्फन्स जैसे पृष्ठ विन्यास के दोषों पर भी चर्चा करती है। सामान्य अर्थ में विडो किसी अनुच्छेद की अकेली अंतिम पंक्ति का अगले पृष्ठ या कॉलम के ऊपर रह जाना है, और ऑर्फन किसी अनुच्छेद की पहली पंक्ति का नीचे अकेले छूट जाना। दोनों स्थितियां पाठ की निरंतरता और पृष्ठ की दृश्य एकता को कमजोर कर सकती है। हैंगिंग पंक्चुएशन का विचार भी किनारे की स्वच्छता से जुड़ा है, जहां कुछ विराम चिन्हों को इस तरह रखा जाता है कि मुख्य अक्षर किनारा अधिक सीधा दिखाई दे। ये बातें पहली नजर में मामूली लगती है, पर पुस्तक का तर्क है कि पाठक इन्हें अलग नियमों की तरह नहीं दस्तावेज की समग्र सहजता के रूप में महसूस करता है। अंतिम प्रूफिंग में ऐसे विवरण देखना ही साधारण टाइपिंग और सजग टाइपसेटिंग के बीच का अंतर बनाता है। निष्कर्ष में द मैक इज नॉट अ टाइपराइटर उन लेखकों, संपादकों, विद्यार्थियों, कार्यालय कर्मियों और छोटे प्रकाशनों के निर्माताओं के लिए सबसे उपयुक्त है जो नियमित रूप से दस्तावेज तैयार करते हैं लेकिन टाइपोग्राफी का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं रखते। यह विशेष रूप से तब उपयोगी है जब सामग्री का मूल्य केवल उसके विचारों से नहीं उसकी प्रस्तुति की स्पष्टता से भी तय होता हो। पाठक इससे विराम चिन्हों की सही आकृति, अनुच्छेदों के विश्वसनीय नियंत्रण, रिक्त स्थान के उपयोग और पृष्ठ की अंतिम सफाई जैसे कौशल सीख सकता है। इनमें से कई नियम आज के सॉफ्टवेयर और उपकरणों में भी लागू है, भले ही पुस्तक का मूल संदर्भ मैकिंटॉश हो। पुस्तक की सीमा भी यही है कि इसके कुछ मशीन विशेष निर्देश और उस समय के इंटरफेस अब पुराने लग सकते हैं। फिर भी इसका केंद्रीय दृष्टिकोण पुराना नहीं हुआ है, क्योंकि डिजिटल लेखन में भी लोग अक्सर टाइपराइटर वाली आदतों से लेआउट बनाते हैं। समान श्रेणी की विस्तृत डिजाइन पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता इसका संक्षिप्त, प्रत्यक्ष और सुधार केंद्रित ढांचा है। यह फॉन्ट इतिहास या जटिल डिजाइन सिद्धांत का व्यापक सर्वेक्षण नहीं करती। इसके बजाय यह उन बार बार होने वाली छोटी गलतियों को पहचानती है जो अच्छे विचारों वाले दस्तावेज को भी शौकिया दिखा सकती है। इसी कारण यह एक उपयोगी संदर्भ पुस्तक और व्यावहारिक संपादकीय अनुशासन का परिचय दोनों है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रॉबिन विलियम्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।